नैष्टिके तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवते पठन स्कंद 4 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 11। आप सभी हमारे साथ में दोहराएंगे। समाम च कुरु माम राजन, समाम च कुरु माम राजन, देव भ्रष्टं यथा पयः, देव भ्रष्टं यथा पयः, अपरतापि भद्रं ते, अपरतापि भद्रं ते, उपावर्ते तमे विभो, उपावर्ते तमे विभो, समां च कुरु मां राजन्, समां च कुरु मां राजन्, देव भ्रष्टं यथा पयः, अपरतापि भद्रं ते, उपावर्ते तमे विभो, उपावर्ते तमे विभो। आप लोग दोहराएंगे। शब्दार्थ समाम समतल च भी कुरु करो माम मुझको राजन हे राजा देव भ्रष्टं इंद्र की कृपा से होने वाली वर्षा यथा जिससे पय जल अपरितौ वर्षा ऋतु के न रहने पर अपि भी भद्रं कल्याण ते तुम तक उपावर्तेत यह रुक सकता है मैं मुझ पर विभो हे भगवान। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजन, मैं आपको बता रही हूं कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र अर्थात नम रहेगी और इस प्रकार से यह सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगी। ये कौन बोल रहा है? पृथ्वी देवी बोल रही है महाराज पृथ्वी से। तात्पर्य, स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा करने तथा वज्र गिराने का प्रभारी है। सामान्यतः पर्वतों के ऊपर वज्र गिराकर उन्हें चूर चूर किया जाता है। ये प्रस्तर खंड कालांतर में फैल जाते हैं और पृथ्वी की सतह कृषि योग्य हो जाती है। समतल भूमि अनाज के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। इस प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथ्वी से निवेदन किया कि वे ऊंची भूमि तथा पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी की सतह को समतल बनाएं। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारिणं। यं प्रवजन्तमनुपेत उपेत कृत्यं द्वैपायन विरह का तर आज हाब पुत्रेति तन्मतया तर्वो अविनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमुवानतयस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमुवानतयस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भूतैर्महद्वी इमां पुरा विभो निर्माय सेते यदमुंस पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो इस ये अध्याय चल रहा है प्रथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार महाराज प्रथु ने पृथ्वी का दोहन किया। दोहन का मतलब दोह देना है। तो उसके अंदर पृथ्वी के अंदर जो सामग्रियां थी कैसे जो है प्रथु महाराज ने उन सामग्रियों को जो कई वर्षों से उनकी सतह के अंदर रखी गई थी उसको फिर से बाहर निकाला। अभी जो है वार्ता चल रही है, बड़ी शांतिपूर्वक वार्ता चल रही है। शुरुआत में हम देख रहे थे किस प्रकार महाराज प्रथु पृथ्वी के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए थे और इतना क्रुद्ध हुए थे कि पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से भयभीत हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे समझाता हुआ और समझाता होने पर फिर जो प्रथु महाराज को चाहिए थे पहले वस्तु हैं, अभी इजली वो सारी चीजें बाहर आ रही हैं। तो सिद्धांत यह है कभी भी बड़ों से किसी भी चीज में हट नहीं करना चाहिए या बड़ों से जो है टक्कर नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मुंह की खानी होगी, अर्थात हमारी पराजय निश्चय है। ये सिद्धांत है। शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने भी अपने से बड़ों से बैर किया है वो कभी भी शांति से नहीं रहे और अंत में उनको पराजय का मुख भी देखना पड़ा। जैसे उदाहरण, कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कौरवों ने जब भगवान शांति दूत बनकर के गए थे तो भगवान तो शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे लेकिन कौरवों ने उनका माना नहीं, सुना नहीं। और मानना तो दूर रहा, दुर्योधन ने तो उनका अपमान तक कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनको जो है महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी अपनी पराजय क्या, पूरा वंश ही विध्वंस हो गया। हिरण्यकश्यपु ने जो है नरसिंह भगवान से जो है वो किया, उनके भक्त से किया, प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या रखा। तो भक्तों से ईर्ष्या करना कोई अच्छी बात नहीं है, भक्तों से ईर्ष्या करने का मतलब ही अपना विनाश है, चाहे वो भक्त छोटा हो या बड़ा हो, भक्त भक्त ही है। तो प्रहलाद महाराज से जो है नरसिंह भगवान, क्या नाम है, हिरण्यकश्यपु ने ईर्ष्या किया था और जिसका परिणाम यह हुआ कि हालांकि हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था, अमृता का वरदान भी ले चुका था ब्रह्मा जी से, लेकिन भगवान ने सारे वरदानों को साइड में रख करके उसका वध कर दिया। ये परिणाम है। तो इसलिए पृथ्वी ने जो है प्रथु महाराज से, हालांकि प्रथु महाराज कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, भगवान के शक्तिशाली अवतार हैं, क्योंकि भगवान किसी जीव में भी किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कोई शक्ति देते हैं तो पूर्ण शक्ति देते हैं, फिर उसमें वो किसी भी टक्कर से पीछे हट नहीं सकता है, परास्त करके ही आगे बढ़ेगा। जैसे भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं, ऐसे ही जिस भी जीव में भगवान शक्ति का आदान करते हैं, जैसे प्रथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है, और शक्त्या का मतलब भगवान ने जो है उनके अंदर विशेष करके शक्ति दी है पालन पोषण की, और इसमें जो भी बाधा आएंगी निश्चित रूप से जो है प्रथु महाराज उसको पार कर देंगे, उसको ध्वंस कर देंगे। तो पृथ्वी ने शुरू में हो सकता है कि अनुमान ना लगाया हो, लेकिन बाद में तो उसको अनुमान मालूम चल ही गया था। तो कहने का आशय यह है सिद्धांत कि हमें जो है बड़ों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनके आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, पालन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके आदेश का हम पालन न करें, नहीं तो हमें पछताना ही पड़ेगा। बड़े अधिकारी वर्ग हैं, उनका बना करके रखना चाहिए, हालांकि जो भी है वो पोजीशन पे है। एक मेरे को बात याद आ रही है, एक भक्त थे हमारे जर्मन के, बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, और वो लखनऊ में वो कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो न जाने कैसे जो है वो कोई अधिकारी के ऑफिस में चले गए और बात बात में कुछ बात ऐसी बन गई कि उसको उठा करके 6 महीने की जेल कर दिए थे, उसी इमीडिएटली उसको बाहर भी नहीं आने दी, वहीं से वहीं जेल भेज दिए उसको। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनका सत्कार करना चाहिए, यहां भी जो पोजिशनों पर उनका भी सम्मान करना चाहिए, और कुछ नहीं करेंगे तो प्रसाद बंद कर देंगे आपका, घूमते रहो। तो सिद्धांत दूसरी बात है, भगवान की सत्ता को चुनौती दिए बिना उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। कितने भी हम शक्तिशाली हो सकते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कभी भी भगवान की सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहिए। चूंकि पृथ्वी हालांकि जो है भगवान की भूशक्ति है ये भी, लेकिन जिस समय प्रथु महाराज ने देखा कि पृथ्वी जो है प्रजा के लिए अन्न उत्पादन नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि प्रजा जो है धार्मिक नियमों का पालन न कर रही हो, क्योंकि आगे पृथ्वी जो है मतामत देती है अपना कि जो है सब अधर्मी थे पहले, तो इसलिए बजाय उनके खिलाने के बजाय मैंने क्या किया, उनको सारी वस्तुओं को समेट करके अपने अंदर रख लिया, लेकिन अभी वो सिचुएशन वैसी नहीं थी। अभी तो जो है प्रथु महाराज का राज्य है, और प्रथु महाराज क्या है, स्वयं भगवत अवतार हैं, प्रजा भी धार्मिक हैं, फिर भी जो है पृथ्वी ने जो है क्या है अन्न देना बंद कर दिया था। जब पृथ्वी को यह मालूम चला कि महाराज प्रथु बहुत ही क्रोध में हैं, और इस समय उनकी जो मूर्ति है साक्षात यमराज की तरह प्रतीत हो रही है, इनसे मैं बच नहीं सकती, अब क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में छुपा करके तो रखा है, ये प्रथु महाराज को भी मालूम चल गया है, क्योंकि उन्होंने देखा उनकी प्रजा से सारे धार्मिक नियमों का पालन कर रही है, ऐसा भी नहीं कि जो है यज्ञ यज्ञ क्या नाम है यज्ञ करने से वर्षा होगी तो वो यज्ञ भी कर रहे हैं सब, तो सारी चीज होना चाहिए, अन्न उत्पादन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर भी तो पृथ्वी ने सोचा कि जो है मैं और क्या उपाय से जो है अब बच सकती हूं। तो कभी कभी हमारे मन में तो ये आता है बचना ही है तो चलो झूठ बोल दो, कौन देखने वाला क्या होता। लेकिन पृथ्वी इस बात को ठीक से समझ गए कि झूठ बोलने से यहां काम चलने वाला नहीं है और डबल जो है उसमें समस्या हम फंसेंगे, क्योंकि वो जानती है कि ये कौन है, ये भगवत अवतार है। तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये भूत की वर्तमान की भविष्य की तीनों कालों की अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए इनसे झूठ बच करके मतलब उसको बोल करके भी बचा नहीं जा सकता। तब जो है पृथ्वी ने जो है एक ही सॉल्यूशन निकाला, एक ही हल निकाला और वो था शरणागति। कितनी भी भयंकर परिस्थिति में क्यों ना हो, सरेंडर कर देना, उससे क्या है कि बड़ी बड़ी विपत्तियां भी जो है क्या हो जाती हैं, ऐसे छुमंतर वो करके निकल जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, यदि भजन करना है तो क्या करो, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहस्रणा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि कीर्तनीय अमानी न मान देना तृणादपि सुनीचेना। यदि वास्तव में हरि का भजन करना चाहते हैं ठीक ठीक से, तो ये सिद्धांत है, अपने को जो है सरेंडर करके रखना पड़ेगा किसी के अंडर, संपूर्ण रूप से सम्यक अंडर है, अपने को उनके हैंडओवर कर देना होगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, निज दास प्रति तुआ अधिकार, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जैसा भी है प्रभु आप मारो या रखो, खिलाओ या भूखा रख दो, मानस देह गेह जो किच मोरा अर्पिलिय तू आपदे नंद किशोरा। तो यदि हम संपूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं भगवान के प्रति, विशेष करके भगवान के प्रति या जो अधिकारी वर्ग हैं उनके प्रति, हमारे जो हैं ये जो है आध्यात्म जगत की बात है, तो उसी में हमारी भलाई है। जैसे पृथ्वी ने देखा, हालांकि वो अपनी जान बचा करके भागी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा पीछे मुड़ करके कि वो जहां जहां जा रही है प्रतु मारा धनुष बाण लेकर के क्या है पीछे लगे हुए हैं, जैसे काल जीवात्मा के पीछे लगा होता है, किसी भी वो शरीर में क्यों ना जाए सब जगह उसको काल पीछा छोड़ता नहीं, ऐसे ही प्रतु महाराज जो है जहां तीनों लोकों में पृथ्वी गई लेकिन कहीं भी उसने ऐसा नहीं पाया कि यहां प्रतु महाराज ने, वहीं जो है उसके पीछे दिखाई दिया मानने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है पृथ्वी ने क्या किया, अपने को हाथ जोड़ करके सरेंडर कर दिया। त्राहि मामि अपि भूतानां पालने अवसितौ भवान् उवाच च महाभाग धर्मज्ञ आपन्न वत्सलः। त्राहि माम अपि भूतानां, हे प्रभु अब मैं क्या करती हूं, सरेंडर करती हूं। पृथ्वी ने क्या बोला, त्राहि माम रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों तू रक्षा चाहती है भाई, क्यों रक्षा करूं मैं तुम्हारी, क्योंकि इसलिए रक्षा करो क्योंकि भूतानां पालने अवस्थितौ, आपका जो अवतार है किसके लिए हुआ है, भूतानां पालनौ पालने अवस्थितौ, भूतों के पालन पोषण के लिए ही आपका अवतार हुआ है और उन भूतों में एक मैं भी भूत हूं, मैं भी एक जीव हूं। तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका प्राकृति इसलिए हुआ है, सारी सृष्टि के जीवात्माओं का भरण पोषण करने के लिए हुआ है। तो इसलिए त्राहि माम, त्राहि माम, मैं भी आपकी जो है शरण में हूं, आप भी क्या करो मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। तो इस प्रकार जो है भक्ति देवी, क्या नाम, पृथ्वी देवी महाराज पृथ्वी के जो है चरणों में विनती कर रही है, अर्थात अपने को क्या की है, सरेंडर की है, अपने को जो है समर्पित की तब जो है प्रथु महाराज ने फिर उसको अभय कर दिया। धार्मिक लोगों के सामने तो सरेंडर कर देना ही ठीक है, अधर्मियों के लिए फिर कोई दूसरा नियम अपनाना चाहिए उस समय। हालांकि धर्म जहां से सरेंडर से काम चलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कभी कभी सरेंडर करने से भी नहीं काम चलता है, तो भौतिक दुनिया का जो सिद्धांत और आध्यात्मिक दुनिया के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन हम सब आध्यात्म दुनिया में हैं, आध्यात्म की चर्चा चल रही है, आध्यात्म को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए ही सिद्धांत है सरेंडर बस। और कोई भौतिक जगत में कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, जाने दो। हमारा जितना काम है उतने से अपना वो ले लेना चाहिए, बाकी सब छोड़ कचरे को। तो इसलिए जो समर्पित भाव है अपने जो अधिकारी वर्ग हैं या बड़े लोग हैं या विशेष करके भगवान के प्रति, यदि हम समर्पित करते हैं तो लाभ क्या मिलेगा? तो भगवान गीता में बोलते हैं, कौन्ते ह प्रतिजानी नमे भक्त्या प्रणश्यति। जिसने एक बार भी हाथ उठा दिए कहे प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान क्या बोलते हैं? कौन्ते ह प्रतिजानी नमे भक्त्या प्रणश्यति। फिर हे कुंती पुत्र, तुम ये जान लो ब्रह्मांड में के तीनों लोकों में उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये भगवान की प्रतिज्ञा। देखो शरणागति में कितना कितनी बड़ी जो है सुरक्षा है, कितना बड़ा लाभ है। कौन ते हैं प्रतिजानी है नमे भक्त्या प्रणश्यति। सर्वधर्मान प्रतिज्ञ मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो, जितने भी पहाड़ जैसे तुम्हारे पाप हैं, चाहे इस जन्म के हों या पीछे के जन्म के हों, जितने भी पाप हैं सर्व पापेभ्यो, भगवान सर्व पापेभ्यो बोल रहे हैं, सबको मैं क्या करूंगा? चुटकी में खत्म कर दूंगा। इसलिए भगवान ने कहा, क्या नाम है, और पीछे तो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधु एव समंतव्य सम्यक विविस्तो ही सह। अपि चेत सुदुराचारो, कितना भी कोई पापी क्यों न हो, ए अन्य च पापा यद पाश्रयाश्रया किरात हूड पुलंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादय। ए अन्य च, जो कल चर्चा चल रही थी, ये सब गाय कुत्ता बिल्ली तक खाने वाले हैं, तो ए भी ये अन्य और भी अन्य, अन्य में आता है जो है और उसने बुरे बुरे कुकृत्य किए हों, ए अन्य च पापा शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णु नमः। केवल आपको प्रणाम करने से ही उपाल मतलब शुद्ध हो जाते हैं, भजन करने से तो क्या कहा जाए। तो इसलिए सरेंडर शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। पांडवों ने केवल भगवान के चरणों में शरणागति किया था, इसलिए महाभारत रूपी दुर्लभ्य महासागर को, ये जो है महाभारत का युद्ध ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये क्या था, ये दुर्लभ्य महासागर था। लेकिन भगवत कृपा रूपी नौका पर सवार होकर के इस दुर्लभ्य सागर को भी क्या किए, वो बड़ी आसानी से पार कर गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म द्रोण तटाजय दृज्जला गंधारी नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण बहनी करणेन बेलाकुला अस्वस्थामा विकरण घोर मकरा दुर्योधन वर्तनी सोतीणा खल पांडवई रण नदी कैवर्त केशव। केवल इतने महासंग्राम को कैवर्त केशव, कैवर्त किसको बनाया, नौका नाविक किसको बनाया, नौका को चलाने वाला किसको बनाया, केशव के हाथ में डंडा पकड़ा दिया, प्रभु ये डंडा अब आपके हाथ में, डुबाओ या पार लगाओ। तो रण नदी कई बार तक केशव इतनी महा, जिसके अंदर भीष्म द्रोण तटा घोर मकरा, बड़े बड़े तिमंगलाएं, तिमंगला जैसे वो जो है वो थे, योद्धा थे, लेकिन भगवत कृपा से चुटकियों से निकल गए, उनको कुछ मालूम नहीं चला। ये है शरणागति का फल। तो इसलिए शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सिद्धांत है जो वस्तु हितकर है सारदायक है वो वस्तु यदि निम्न स्थान से या निम्न व्यक्ति से भी मिल रही है तो भी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सार वस्तु को क्या करना चाहिए, कहीं से भी उसे ग्रहण किया जा सकता। जैसे चाणक पंडित ने कहा है, विषात अपि अमृतम ग्राह्यम, मेधात अपि कांचनम, नीचात अपि उत्तमाम विद्या, स्त्री रत्नम दुष्कलात अपि। विषात अपि अमृतम ग्राह्यम, विष में से भी हम अमृत को ग्रहण कर सकते हैं। तो विष में से अमृत तो ग्रहण किया ही था, महाभारत जो क्या नाम समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला, अमृत थोड़ी निकला, विष निकला। अब कोई कह करे भाई ये तो विष है भागो, तो अमृत का कलश मिलते हैं आज देवता लोग इतने मत तो होते नहीं होते, क्योंकि जानते अमृत तो पी रखे हैं, कौन मानने वाला है हमें। तो देवताओं का जो है विषात अपि अमृतम, क्योंकि उन्होंने विष से भी अमृत ले लिया था। और मेधात अपि कांचनम, यद गंदी वस्तु है उसमें से भी सोने को उठा सकते हैं, नाली में सोना पड़ा हो तो हम छोड़ देंगे क्या, ये तो नाली में नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति है तुरंत उठाएगा वो। नीचात अपि उत्तमाम विद्या, अपने से यदि कोई निम्न है ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें सीनियरों से ही केवल सुनना है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो सुखदेव उस समय सीनियर थे या जूनियर थे, 16 वर्ष के थे मात्र उस समय। वो आप जो है कौन कौन, नारद जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, धौम्य हैं, पर्वत मुनि हैं, असित है, देवल है, कौन परशुराम है, कौन नहीं था वहां, नारद सब हैं, इतने बड़े महारथी अतिरथी सब बैठे थे वहां। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जी इसी ने, अरे कल का भक्त है, हो सकता है कल का भक्त हमसे ज्यादा जानता हो। भक्ति कोई आज कल की नहीं होती है। प्रहलाद महाराज को जो है उनके सहपाठियों से पूछा कि भाई तुम तो हमारे साथ के हो, तुम इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हो, तुमने कहां से सीखा। तो प्रहलाद जो है गर्व से ही भगवान के बारे में, वहीं से वो पूरा मतलब जितना चाहिए था उनके पास में सेफिशेंट वो था, ज्ञान था। तो भक्ति के लिए आज का है, अभी उसने भर्ती किया है, अभी हुआ है या कितने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं, यही देखते हैं, खुद ही प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत सीनियर भक्त हैं, वो बेचारे कभी भी लेक्चर नहीं दिए। और बहुत से ऐसे होते हैं बस आए नहीं को तुरंत चालू कर देते हैं, होता है कि नहीं होता। तो भजन की जो प्रणाली है वो ऐसे नहीं है, सोचना चाहिए कि हमें जो कोई सीनियर है तभी हमें सुना, हो सकता है पूर्व जन्म में उसने कितना भजन किया है। तो इसलिए नीचात अपि उत्तमाम विद्या, सूत गोस्वामी से सोनक आदि ऋषि सुन रहे हैं, काक भुसंडी से किन्होंने सुना, गरुण जी सुने, देखो नीचात अपि उत्तम विद्या, उत्तम विद्या के लिए कोई भी पात्र हो सकता है, जो वास्तव में ही भगवत परंपरा में है, चार परंपरा में है, ठीक से नियमों का पालन कर रहा है, उससे सुन लेना चाहिए। और स्त्री रत्नम दुष्कलात, दुष्कलात अपि दुष्कुल मतलब अच्छा कुल खानदान नहीं है, लेकिन सुशील सर्वगुण संपन्न कन्या है तो उसे ग्रहण की जा सकती है। जैसे सत्यवती का पालन पोषण कहां हो रहा था, धीमर के घर में, वही तो था ना, वही तो पालन पोषण कर रहे थे उसका, लेकिन महाराज शांतनु ने उससे भी जो है वहां से वह स्वीकार किया। तो इसलिए सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ये बताना चाह रही है, ठीक है आप मेरे को मानना चाहते हैं, आप सामर्थ्यवान है मार सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुनो। तो मानो उन्होंने प्रथु महाराज ने कहा ठीक है सुनाओ, तुम क्या सुनाना चाहती हो सुनाओ। तो पृथ्वी सुना रही है कि देखो हालांकि मैं वसुंधरा हूं, सारी वस्तुएं सृष्टि के लिए जितनी भी जरूरत है सारी सृष्टि में, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंगे, जलचर है, थरचर, नवचर है, जितनी जो वस्तु चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, और उतना चाहिए जितना चाहिए उससे ज्यादा मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सारी समस्या क्यों खड़ी हुई, तो इसलिए हुई कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि के सह यज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति, जब सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया इस जगत की और इन जीवात्माओं की, तो उन्होंने उनके लिए कुछ विधान किए थे, कुछ वेद वेदों का ज्ञान समर्पित किया था। हालांकि उनको इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए भेजा, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं भेजा, तो उनको साथ साथ में और भी दूसरा कुछ करने के लिए भी भेजा था। जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, सह यज्ञ विष्णु को समर्पित करके करेंगे, यज्ञ अर्थात कर्मणो, भगवान विष्णु को समर्पित करें, ठीक है इंद्रिय तृप्ति करें। अब खाना है ठीक है, किसी को मालपुआ या रसमलाई अच्छी लगती है ठीक है, वो तो मन रुक नहीं सकता, बैठ रहे खा रहा है तो ठाकुर जी को अर्पण कर दो फिर। तो इसलिए सृष्टि के अंदर जितनी भी जीवात्मा है साथ साथ में सह यज्ञ यज्ञों को भी प्रकट किया था उन्होंने, वेदों को भी प्रकट किया था, जिससे वो क्या होगा अपनी इंद्रिय तृप्ति भी करें और साथ साथ में लास्ट में क्या करें भगवत धाम जाए। कोई इस जगत में रहने के लिए थोड़ी आई थी वो सब, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस चीज को जो वास्तव में सार गर्भित वस्तु थी इस जगत के अंदर आकर के उसको क्या करना चाहिए, धार्मिक पद्धति को अपनाना चाहिए, उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु इसके अंदर है लेकिन उसको क्या करना चाहिए, भगवान को समर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजों को तो बंद कर दिया, खाओ पियो मौज करो, धृतम प्रित्वा घृतम प्रित्वा ऋणम, हा ऋण करके घी पियो। तो बताओ इस सिद्धांत को यदि हम लागू करेंगे, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा इस बात को, बड़े बड़े जो है इस क्या नाम है एक, हाँ एक अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल रहे हैं और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी क्या दुर्दशा होगी अब कह सकते हैं हम, ऋणम कृत्वा है, अब ऋण करके आप घी पियोगे तो फिर जो है बाद में जितने ऋण हैं उतने फिर डंडे और इतने फिर जन्म उसकी दूसरे दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी देवी जो है समझाना चाहती है प्रथु महाराज को, ठीक है हम जानते हैं कि आप भगवत भगवत अवतार हैं, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत था ये सिद्धांत था, मैंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगी, हर वस्तु देने के लिए तैयार हूं और दिया भी है मैंने, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया, दिया भी है। अभी देखो आज से जो है 20-25 साल पहले जमीन इतनी ही थी, है कि नहीं, इतनी लागत की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज जमीन जो कृषि करते हैं वो जानते होंगे इतनी लागत की जरूरत नहीं थी, और जमीन में वो इतना जैसे आजकल लूट खसूट हो रही है उतना भी जमीन पड़ी रहती थी, उसमें जिसको जरूरत था उतना वो उपयोग करता था, बाकी पड़ी रहती थी और उसमें ही वो क्या रहता था, मस्त रहता था, है कि नहीं? अभी से कुछ दिन पहले के आप देख लो, और आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। इतनी लागत लगानी पड़ रही है कि उसका जो है आपको जितना लगाया उतना भी नहीं मिल पाता है, और जमीन तो जो है देखने के लिए नहीं रही है। एक एक उसमें थोड़े थोड़े टुकड़ों में भी जो है लोग झगड़ा कर रहे हैं, केस चल रहे हैं, कोर्ट भरे पड़े इन्हीं केसों से, भरे मोस्टली जमीनों के केसों से भरे पड़े हुए। कितना मतलब समय का परिवर्तन हो गया। अब बताइए तो पृथ्वी देवी जो है मानो बोलना चाह रही है पृथु महाराज से कि देखो आप बोलते ठीक है, लेकिन बताइए ऐसे अधर्मी लोगों को हम खिलाएंगे? एक तो खुद अभी से अधर्म पूरा कर रहे हैं और खिलाएंगे, और अच्छी तरह खिलाओगे तब तो फिर उनको कौन रोक सकता है, और पाप करेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम इनका वध करो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो सारे अपने ही स्वजन हैं, गुरुजन हैं, सब भरे हुए, इनका कैसे कर सकते हैं? बोला तुम नहीं करोगे तो ये सारे के सारे एक तो जो है दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन खुद पापी है, अधर्मी है, अधर्म के अनुसार चल रहा है, ये उसमें सहयोग देंगे तो ये सब क्या होंगे, और पाप में जो है लिप्त होते जाएंगे। कम से कम तुम वध कर दोगे तो जो युद्ध में जो मरेगा वो कम से कम उसको स्वर्ग तो मिल जाएगा, यह तुम इनका वध नहीं करते हो तो इनको कहां जाना है, सबको नंबर लाइन लगा करके नरक में सड़ना पड़ेगा। तो जो है पृथ्वी जो है महाराज को, पृथु महाराज को यही समझाना चाहती है कि देखो ठीक है लेकिन ये सिद्धांत ये है, इसको स्वीकार करो कम से कम। तो पृथु महाराज उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उसके बाद में जो है सम्मति प्रदान कर देते हैं। तब जो है जब सम्मति हो गई, सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, तब जो है पृथ्वी अब उनको बता रही है कि कैसे वस्तुओं को तुम बाहर निकाल सकते हो। देखो राजीनामा से, प्रेम की भाषा से हर वस्तु सुलभ है, शांतिपूर्ण व्यवहार से हर वस्तु सुलभ है, जहां अशांति है, छल कपट लूट खसूट का काम है, वहां कोई भी लूट खसूट करने वाला शांत नहीं रहेगा, और जिसका लूट खसूट किया है वो भी शांत नहीं है। लेकिन शांति से सब होता है। इधर जो है पृथु महाराज भी उन सुनना चाह रहे हैं, उनको बात को माने, हाँ ठीक है अब क्या करना है, अब तो दो, हाँ ठीक है अब मैं देने के लिए तैयार हूं, अब चाहिए जो भी चाहिए जो वस्तु देने, लेकिन आप पहले क्या करो, अब जो है तीन बातें उन्होंने बताई, इनको तुम करो। पहला सिद्धांत ये लागू कर दो। क्या सिद्धांत पहले लागू करना है? पहले सिद्धांत ये लागू करना है, महाजने एन गतहा, जो महाजनों ने जैसा किया है पहले ऐसे ही चलना चाहिए इन प्रजा को सबको। महाजनों ने क्या किया है? तो महाजनों ने यही काम किया था, क्या नाम है, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधन। उन्होंने जो है कोई भी वस्तु लेते थे, भगवान को ऑफर करते थे और उसको भोग के स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में उसको ग्रहण करते थे, ये काम करना है, ठीक है वो ओके हो गया। दूसरा सिद्धांत फिर बताया, कल हम सुने थे, कल के में उन्होंने बताया कि ठीक है बछड़ा चाहिए, क्यों गाय को धोने के लिए बछड़े की जरूरत है, दूध निकालना है तो बछड़ा चाहिए। आजकल तो बछड़े की भी जरूरत नहीं हो तो इंजेक्शन मारते हैं बस दूध निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो दूध दूध नहीं है, वो विष है। तो गाय को धोने के लिए बछड़े की जरूरत है, धोने वाला होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, ठीक है वो भी ओके किया, ठीक है। और तीसरा जो है आज के बारे में बता रहे हैं, क्या करो तीसरा, पृथ्वी को समतल कर दो। क्यों, क्या करना है समतल करके? जब समतल होगी तो वर्षा होगा, वर्षा होगी जो जैसे इंद्र वर्षा के प्रभारी हैं और वज्र के प्रभारी हैं, तो यदि जमीन समतल होगी तो जो वर्षा होगी तो वर्षा से क्या है कि पानी चारों तरफ भरेगा, ठीक से भर जाएगा, निकलेगा नहीं। जब ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो क्या होगा, पानी कहीं भी लुढ़क जाएगा, जो जहां एक जगह बिल्कुल सूखा है एक जगह पूरा भरा हुआ है, तो न तो भरे हुए पानी का वो काम का किसी का रहा, न सूखे वाला किसी का काम रहा। इसलिए क्या करो, जमीन को समतल कर दो, समाम च कुरु माम राजन, हे राजन समाम च कुरु माम, ए मेरे को क्या करो आप, पहले जो ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची है उसको क्या कर दो, बिल्कुल एक लेवल में कर दो। क्यों? इसलिए देव भ्रष्टं यथापय, जब इंद्र वर्षा करेंगे तो जो जल है वो क्या होगा, अपरता बपि ते उपावर्तते में, अर्थात जो जल बरसेगा तो जल बरस करके लुढ़क नहीं जाएगा, ऊंची नीची में क्या होगा इधर उधर बहने की समस्या है, तो जब जो है वो बह जाएगा पानी तो वो सूखा रहेगा, नमी नहीं रहेगी जमीन के अंदर, जब जमीन के अंदर सूखा पर रहेगा नमी नहीं होगी तो आप कुछ भी डालो उगेगा नहीं। इसलिए तुम क्या करो, पहले जो है इस जमीन को समतल करो, जिससे इंद्रदेव वर्षा करेंगे, वर्षा से जो है पानी जो है भरेगा, भरे से जो नमी या आर्द्रता मेरे अंदर रहेगी, जब फिर तुम आप बीज डालो फिर देखो मैं कैसे जो है उसको बढ़ा करके देती हूं, एक डालो 100 बीज ले लो मेरे से गिन करके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा करना तथा वज्र गिराने का प्रभारी है। ठीक है, वज्र तो अभी वज्र की जो है क्या नाम है प्रथु मारा, तो इंद्र के वज्र के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं कि जब उनका वज्र गिरेगा, जो चट्टान है पहाड़ है वो सब टूट करके जो है वो समतल होगा तब तो बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने तो जो है प्रथु महाराज तो जो है शक्तिशाली थे, तो उन्होंने क्या किया अपने धनुष बाण की उससे ही ठोकरों से तोड़ तोड़ करके बड़े बड़े चट्टानों को क्या कर दिया, बिल्कुल समतल कर दिया। आप क्या नाम है अभी जैसे जो बिजली वज्रपात होता है, कहते ना बिजली का वज्रपात होगा, वज्रपात से बड़ी बड़ी चट्टान समतल हो जाती है, ये बात है। इंद्र ने पहले जो पहाड़ उड़ते थे, पहाड़ क्या करते थे उड़ते थे, तो पहले तो वैसे ही सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, और दूसरा ये पहाड़ उड़ते थे तो जो थोड़ा बहुत कोई दिखाई देता तो वहां बैठ गए तो राम नाम सत्य वहीं हो जाता था। तब जो है इंद्र ने देखा ये काम तो ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए, इसको कैसे रोकना चाहिए इस विनाश को, तो उन्होंने अपने वज्र से क्या किए, पहाड़ों के परों को ही काट दिया, तो जहां थे वो वहीं के वहीं धराशायी रह गए। कब जब वर्षा होती है कभी वज्रपात होता है बिजली गिरती है तो धीरे धीरे करके पानी की उससे वो घट रहे हैं, जैसे मतलब चट्टाने कम हो रही हैं, स्लो प्रोसेस जो अभी तक चल रहा है, लेकिन फिर भी ये है। तो इसलिए जमीन कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए उसके अंदर, और इस प्रकार अन्न करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होना चाहिए, भगवत सेवा में लगाएंगे, तब निश्चित रूप से इस सृष्टि के अंदर कोई भी जीवात्मा भूखा नहीं मर पड़ता, ये पृथ्वी का जो है घोषणा है। जितना चाहिए उससे भी ज्यादा क्या होगा, हमें सामग्री मिलेंगी। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी महाराज प्रथु से निवेदन कर रही है कि ये आप लागू कर दो और जितना चाहिए उतना आप मेरे से सामान ले लो, जितना चाहिए। तो प्रथु महाराज इनके जो है इनको सजेस्ट जो उनका वो था प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद में आगे क्या होता है उसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा
ठीक है उतना ही सब भी मन उत्पादन।